आज का रात्रि क्लास है सत्ताईस चार 1966 बच्चों के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी होती है। अगर अपनी रिस्पांसिबिलिटी को नहीं समझेंगे तो बाप से इतना वर्षा नहीं पा सकेंगे। समझेंगे कि जिम्मेवार दीदी दादी दादा हैं, हम तो जिम्मेवार नहीं हैं। तो अपन को घाटा डाल देंगे। महावीर कोई एक नहीं होते हैं, महावीर बहुत होते हैं। इतने ढेर बच्चे हैं, तो राजाई पर भी तो चढ़ना है बच्चों को। जितना करेंगे इतना ऊंच पद पाएंगे। जो बाप है और बच्चे देखते हैं कि हमारे मम्मा बाबा, वो तो जिस्मानी मम्मा बाबा हुए ना। एडॉप्टेड हुआ तो भी जिस्मानी हुआ, मम्मा बाबा इतना ऊंचे पद पाते हैं तो हम क्यों नहीं पा सकेंगे। तो इस समय पुरुषार्थ की बड़ी जिम्मेवारी है। भले माया इस समय कान को कपट लेती है, नाक से पकड़ लेती, जैसे हम करते हैं ना, कान पकड़ो नाक पकड़ो, ऐसे नाक कान पकड़ करके पीटो। ठीक वैसे ही माया भी ऐसे ही इनको पकड़ती रहती है। कभी कान से पकड़ लेती है, कान से कैसे पकड़ती है, अपनी समझ के मुआफिक। उल्टी बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। और नाक से कैसे पकड़ती है, परचिंतन सूंघा सांगी, ये क्या करता है वो क्या करता है। कभी तो माया कानों को थपथपाई भी देती है, बहुत अच्छा सुना। तो माया भी कोई कम नहीं है, इसलिए खबरदार रहना। अरे खबरदारी कौन सी रखें? बस यही खबरदारी कि बाप की याद में रहें। बाप की याद में रह करके खुश होना। भले धंधा धोरी कोई भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, नफा है नुकसान है घाटा है, इन सब बातों में बुद्धि का योग टूटना क्यों चाहिए? ये सब अल्पकाल की बातें हैं। तो बाप की याद क्यों टूटनी चाहिए? ये स्त्री है ये पुरुष है, चलो स्त्री या पुरुष बीमार पड़ते हैं, तो भी उनके साथ लव तो रहता है ना। इसमें भी अगर कोई बीमार है या कुछ है तो अपने बाप को क्यों भूलना चाहिए? या सजनी अपने साजन को क्यों भूले? बीमार है या घाटा है या कुछ भी, वो संबंध जिससे बहुत फायदा होने वाला है उनको क्यों भूलना चाहिए? परंतु फिर भी माया बुलाए देती है और फिर बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा की सर्विस भी बड़ी गंभीर है और मनुष्य हैं बिल्कुल पत्थर बुद्धि। देखो तुम तो मत्था मारती हो, देखती रहती हो कितना मत्था मारते हैं, बाबा बच्चों से मत्था मारते हैं ना, कितना समझाते हैं। कहते हैं बहुत अच्छा अच्छा बच्चा है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। समझाने के समय भागता है कि बहुत अच्छा समझाते हैं, और हमको बाप से वर्षा जरूर लेना चाहिए। फिर बाद में देखो फुर्सत ही नहीं, फुर्सत नहीं है तो बहुत घाटा डाल देते हैं। यानी उनको मालूम नहीं पड़ता है कि बाबा भी ये जो कमाई के लिए कहते हैं और हम कहते हैं फुर्सत नहीं, अरे ये कमाई है ना, जो कोई भी व्यापारी है या गवर्नमेंट सर्विस में है वो उनकी है तो कमाई ना। ये भी तुम्हारा ज्ञान रत्नों का व्यापार है। रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में हो, ये बात बुद्धि में बैठती नहीं। और वो लौकिक दुनिया की कमाई तो एक जन्म के लिए है, ये कमाई तो 21 जन्म के लिए है। तो ये कमाई तो जरूर करनी चाहिए। क्योंकि 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो ये कमाई अभी हाथ से निकल गई तो फिर हाथ में भी नहीं आएगी। बच्चों को ये बात कोई बुद्धि में बैठती नहीं है। देखो इतनी प्रदर्शनी की है यहाँ बॉम्बे में, एक का भी ऐसा समाचार नहीं है कि वो एकदम घायल हो पड़ा हो कि बाबा आया हुआ है। और उस बाबा से बेहद का वर्षा मिलना है। कलप पहले मुआफिक हम फिर से सो देवी देवता राजपद पा सकते हैं, ऐसा समझने वाला एक भी नहीं निकला। नहीं तो मुख से वो कहे ना, ये बातें तो बिल्कुल बरोबर है। बेहद का बाप आया है तो उनसे वर्षा जरूर लेना चाहिए। वो बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं। क्यों नहीं बैठती? बाबा ने समझाया है क्योंकि ये बेचारे सभी बंदर बुद्धि हैं। दृष्टांत भी देते हैं कि बंदरों के आगे रतन रखते, रतनों को फेंक दिया, भूंगरे डाले तो उठाई लिए। वहां तो लिखा है कि भाई वो रतन भी उनके मुख में डाल दो तो फेंक देंगे। तुम हरेक रूप और बसंत हो तो तुम्हारे मुख से ये रतन निकलते हैं। कोई कोई ऐसे नहीं कि सभी कोई ये रतन निकालते हैं, थोड़े बच्चे हैं जिनको पूरा निश्चय भी है और अभी भी उनको बाप में लव है, जिनके अंदर बाप से लव है उनसे सर्विस हो सकती है। और होती भी है। कोई भी हालात में, स्थूल सर्विस में, सूक्ष्म सर्विस में, वाचा की सर्विस में फतेह पानी है, क्योंकि इस संगम युग के समय की फतेह फारिवर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगी। आगे चल करके तुम देख लेंगे, जो जो भी बचेंगे या रहेंगे कि कौन कौन कल्प कल्प किस किस पद को पाते हैं। इतना क्लियर होगा पिछाड़ी में, सब के आगे क्लियर होगा, बहुत होगा। इसलिए बाप भी कहते हैं, बच्चे कुछ न कुछ याद करके सर्विस करते रहो। सर्विस में थोड़ा बहुत कुछ न कुछ मुंह देते रहो, है तो कुछ भी नहीं, बस सिर्फ कह देना है बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा ले लो। तो बाबा कहते हैं ये बड़ा मीठा अक्षर है, शिव बाबा कहते हैं। कि देह और देह के साथ संबंध छोड़ दो, ये जो जप तप यज्ञ दान पुण्य तीर्थ वगैरह जो कोई भी है, जो कुछ भी करते रहे, इन सब से मेरे को पाए नहीं सकते हो। यानी मेरे से वर्षा नहीं ले सकते हो। सिर्फ वो ऐसा तैयार हो जावे जो अच्छी तरह से भाषण कर सके। ये भी होना है, सर्विस तो वृद्धि को पाना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सबसे उन बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार हो, गुड नाइट। पिछले क्लास में ये रात्रि क्लास चल रहा था, पंद्रह नौ छियासठ का, छठे पेज के आदि में बात चल रही थी। ला कहता है कि जब मम्मा बाबा कहते हैं तो तक्षणसीन जरूर बनेंगे, दिन प्रतिदिन पॉइंट्स ऐसी सहज होती जाएगी जो तीर लग जाएगा, झट लग जाएगा। तुम्हारे जो तीर है ना बच्ची, ये दिन प्रतिदिन बड़े तीखे होते जाते हैं। जैसे तलवार को तीखा किया जाता है ना, तलवार में जौहर भरा जाता है ना, तलवारें होती हैं, वो ही तलवार 10 रुपए की और वो ही तलवार 1000 रुपए की। तो 1000 रुपए की तलवार में क्या है, जौहर भरा हुआ है। ये बाबा ने इन तलवारों का भी धंधा किया हुआ है। कौन से बाबा ने है? अरे दो बाबाएं हैं ना, एक छोटा बाबा एक बड़ा बाबा। छोटा बाबा ने बहुत धंधे किए, तलवार बेचने का भी धंधा किया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। वो हद का धंधा था या बेहद का? हद का धंधा था। और बेहद के बड़े बाबा ने क्या किया है? बेहद का बड़ा बाबा कौन है? छोटा बाबा कृष्ण बच्चे के द्वारा बोलता है और बड़ा बाबा राम बाप के द्वारा बोलता है। जैसे गीता में कहा है, रामो शस्त्र व्रताम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूँ। तो वेद की तलवारों का भी धंधा किया है। जोर भरी तलवारें, बाण कहो, तो उन तलवारों में वो निशानी रहती है बहुत, जिनसे हम मालूम करते हैं कि इनमें जौहर है। वो बड़ी तीखी होती है। तो अभी तुम बच्चों में जौहर भरा जा रहा है, तुम्हारे बाण तीखे होते जाते हैं, दिन प्रतिदिन तीखे बनते जाते हैं। वो तुम बच्चियां पिछाड़ी में आकर के भीष्म पितामह द्रोणाचार्य वगैरह को बहुत बाण मारेंगी। तब वो कहते हैं कि ये ज्ञान बाण तो इनमें भगवान भरते हैं, इनके बुद्ध रूपी तर्कस में भगवान ने ये बाण भरे हैं, जो इतने तीखे हैं। अभी वो बाण बाण तो कुछ भी नहीं है ना बच्चे, नहीं ये बुद्धि में, बुद्धि रूपी तर्कस में व्याप आपने ये ज्ञान भरे। तो आगे चल करके तुम ये बाण मारेंगी, कोई देर नहीं है। वो भी आकर के खुश होंगे जब सुनेगा समझेगा और खुश हो जाएगा। चरणों में तो गिरना ही है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी इंसल्ट भी बहुत की है। किन्होंने? उन सन्यासियों ने। तो भगवान ने माताओं के द्वारा ही इन्हों को बाण मरवाए हैं, क्योंकि इन्होंने ही तुम्हारी इंसल्ट की है। ये हिसाब किताब तो है ना कर्मों का, लेन देन तो है ना। जैसे बाप कहते हैं क्रिश्चियंस ने भारत से बहुत पैसा उड़ाया है, अभी फिर उनसे वापस मिल रहा है। अस्सी नब्बे के लिए भी लोन लेते रहते हैं, बना 66 की बाणी है, इतने लंबे समय के लिए भी लोन लेते रहते हैं, समझा ना। यहाँ आकर के बाबा से राय लेवे, कि बाबा हम लोन लेवे, तो बाबा उनको बोले कि हर्जा नहीं है, छह परसेंट ब्याज लेवे, 7% ब्याज लेवे तो भी ठीक है। पचास वर्ष के लिए ले लेवे, जितना चाहिए उतना, क्योंकि उनको मिलना तो कुछ भी नहीं है। उनको वापस कुछ भी थोड़े ही लेने का है, क्यों? क्रिश्चियंस जो इतना लोन दे रहे हैं भारत को या भारतवासियों को, तो उनको वापस क्यों नहीं लेना है? है? क्योंकि विनाश सामने खड़ा है, विनाश हो जाएगा तो लोन क्या मिलेगा उनको? तुम्हारी ईश्वरीय सेवा का काम तो हो जाएगा, तो जितना तुमको चाहिए उतना ले लो। परंतु अभी किसको कहें? इंदिरा गांधी को कहेंगे, इसको सुनाएंगे, बोलेगी, ये चरी हुई है, इसका माथा खराब हुआ है। प्रेसिडेंट को बताओ, और कुछ ऐसी बात करते हुए, क्योंकि ये तो प्रजा का राज्य है, ये प्रजा का राज्य चल नहीं सकता है। कोई भी राय पर नहीं चल सकते हैं एकदम। इतना अन्न भी मांगते हैं तो भी रड़ियां मारते रहते हैं कि इतना अन्न क्यों मंगाते हो, अपना अन्न बनाओ, ये करो वो करो। अरे भूख मरते हैं तो मंगाना ही पड़ेगा ना, ये कोई बात थोड़ी है। कि जास्ती कर्जा नहीं लेना, जरा लेना ही पड़ेगा। तो देखो, कोई क्या बकते रहते हैं, कोई क्या बकते रहते हैं, और आपस में ही बहुत बातों के ऊपर बकते रहते हैं। वो कौरव भी लिखते हैं तो बिगड़ते भी हैं। तो कोई बोलेंगे ये तो बिल्कुल ही राइट है ना, भगवान वाच, ये यूरोपवासी यादव हैं और भारतवासी कौरव हैं, भारतवासी पांडव भी है, यूरोपवासी यादव क्यों कहा? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है यादव बड़े धनाढ्य होते थे, बहुत शराब पीते थे, उनके बुद्धि रूपी पेट से मिसाइल्स निकले थे, म्यूसल, जिसे उन्होंने अपने का सारे कुल का विनाश किया था। अब ये मिसाइल से कुछ और तो नहीं है, वही महाभारत प्रसिद्ध मूसल है। और भारतवासी कुरु की संतान कौरव है, कुरु का अर्थ ही है करो, तुम्हारे करने से ही स्वर्ग बनेगा। कहते हैं दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य लाएंगे, अरे राम राज्य तो राम ही लाएगा ना, ये हिस्ट्री में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट कोई भी स्वर्ग नहीं ला सके, दुनिया और ही नरक बनती गई। तो भगवान ही आते हैं राजयोग सिखाकर विश्व की बात सही देते हैं। राजयोग के सिवाय कोई भी सृष्टि पर राजा नहीं बन सकता। नौकर चाकर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, परंतु राजा ही कोई नहीं बना सकता। उस घमंड में आकर के कहे कि हम दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, तो समझो कुरु की औलाद कौरव है। उनकी अपोजिशन में पांडे की औलाद पांडव थे। पंडा सारी दुनिया का एक ही है। जिसे रास्ता बताने वाला कहा जाता है पंडयति, रास्ता बताता है। सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, वो पंडे को जो फॉलो करते हैं वो पांडव कहे जाते हैं। पांडव बहुत थोड़ी संख्या में थे जो भगवान को फॉलो करते थे, और वो भारत में ही थे। आज फिर वही माहौल है। इस दुनिया में तीन तरह की बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। बहुत बड़ी सेना है यादवों की, कहते हैं भगवान यादवों के बीच में आया था, बाबा भी क्या कहते हैं, हैं? यादव स्वदेशी थे या विदेशी थे, क्या थे, विदेशी थे। बाप भगवान भी कहते हैं मैं विदेशी बनकर आता हूं। तो बताओ यादव कौरव और पांडव क्या क्या करते थे, अभी देखो, है ना, बराबर। और ये कौरव और यादव भारत में भाई भाई है ना, इनका दूसरा नाम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दे दिया है शास्त्रों में। तो हम कोई दूसरे थोड़े ही हैं। भारत के ही तो रहने वाले हैं। और बाप भी कहते हैं ये आसुरी संप्रदाय और ये है दैवी संप्रदाय। आसुरी क्यों कहा? असुर किसे कहा जाता है? आ माने नहीं, सुर माने सुर, जो भगवान बाप के सुर से सुर नहीं मिलाकर चलते, अपनी अलग अलग लम्मतें निकालते हैं, भगवान की वाणी को फॉलो नहीं करेंगे, भगवान जिस अर्थ में आता है उस रथ की गोद को पसंद करते हैं, सुख गोद को कहा जाता है। तो देवहन को फॉलो करने वाले हैं, भगवान की बातों में सुर मिलाकर तब नहीं बोलेंगे, तब नहीं चलेंगे। नहीं तो बताएं, ये भगवान वाच किसने कहा? है कौन है भगवान? देहधारी को भगवान मानते हैं या निराकार को भगवान मानते हैं? गीता का भगवान कौन? अरे गीता साकार मुख से सुनाई ना, तो गीता का भगवान कौन हुआ? जानते ही नहीं है भगवान वाच क्या होता है। तो देखो, ये दैवी संप्रदाय जो भगवान बाप को जानते हैं, मानते हैं और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, और वो आसुरी संप्रदाय जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, चलने की तो बात ही नहीं। कौन है यादव संप्रदाय और कौरव संप्रदाय? जान तो लेते हैं लेकिन मानते नहीं है। जैसे रावण भी जानता था कि भगवान कौन है, परंतु मानता नहीं था, असुर था ना। तो ये आसुरी चेहरे अप्रत्यक्ष होने वाले हैं, और दैवी संप्रदाय भी बन रही है। जो दैवी संप्रदाय बनती है वो आसुरी संप्रदाय नहीं बनती है। तो देखते हैं आसुरी संप्रदाय हम भी थे, अभी आसुरी संप्रदाय से बाप दैवी संप्रदाय बनाए रहे हैं, वो जो आसुरी संप्रदाय से फिर करके दैवी संप्रदाय बने, वो तो आते ही रहेंगे। आगे भी आते रहेंगे। और तुम दैवी संप्रदाय के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे, ढेर के ढेर वृद्धि को पावेंगे। अच्छा चलो, 84 जन्म पूरा हुआ, अभी बाकी थोड़े दिन हैं। अभी हम बाबा से पूरा वर्षा ले लेंगे। बैठ करके बाबा से रूरियान करें, जैसे भक्ति मार्ग में वो स्तुति की जाती है ना, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की भी स्तुति करते हैं। परंतु ये लक्ष्मी नारायण देखने में थोड़े ही आते हैं, कृष्ण की कितनी महिमा करते हैं। अभी वो कृष्ण है कहाँ? बोलते हैं कृष्ण ऐसे करता था, वैसे करता था, ये करता था, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। तो यहाँ तो देखो, वो कृष्ण सन्मुख बैठा हुआ है, और वो हमको सब बताते रहते हैं। अभी कहते हैं मुझे याद करो, अपन को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को हमने नंगा भेजा था, तुम यहाँ इस सृष्टि में नंगे आए थे ना, जब पहले पहले आए थे परम धाम से इस सृष्टि पर, तो शरीर रूपी वस्त्र के बगैर नंगी आत्मा आई थी ना, अभी तुमको याद है? तुम भूल तो नहीं गई हो? तो इसको कहा जाता है हाँ बाबा, अभी हमको स्मृति आ गई, हमको स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म लिए। अभी हम निश्चय करते हैं कि बरोबर कल पहले भी ऐसे ही आपने हमें समझाया था कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तो आप बोलते हैं मन मना भव, यानी मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। अभी ऐसे तो कोई मनुष्य कह भी नहीं सकता। और देखो ये लड़ाई भी सामने खड़ी है, और है बच्चे भी आकर के बनते जाते हैं, दिन प्रतिदिन बच्चों की बढ़ोतरी होती जाती है, नए नए बच्चे आते रहते हैं ना बच्चे। तो ये आते रहेंगे, जास्ती जास्ती आते रहेंगे। फिर जब बहुत होगा तो और जास्ती आवेंगे। जो जो अपनी सैंपलिंग होगी, कल पहले ब्राह्मण बने होंगे, वो कोई न कोई से आर्य समाजी, कोई फलाना यहाँ वहाँ से निकलते आएंगे। तो ये नालिस तो फ्री है, वो भले अपनी ये रूहानी नालिस भी आकर के लेवे और सर्विस में लग जावे। क्योंकि इनको भारत का भी रूहानी सर्विस का सोशल वर्कर्स भी तो होते हैं ना बच्चे, कुमारियां भी बहुत हैं सोशल वर्कर्स, क्योंकि वो कुमारियां तो होती हैं जिस्मानी और ये रूहानी सोशल वर्कर। वो जिस्मानी तो पाई पैसे की हैं और ये तो हीरों की कमाई करने वाली। तो शौक जागेगा ना, जिन्होंने किया है वो आप ही जागेंगी। और जागेंगी तो पीछे नहीं रहेंगी। बाबा कहेंगे नहीं बच्ची थोड़ा और आगे बढ़ो, कहेगी नहीं बाबा मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। आप कहते हो कि थोड़ा आराम करो तो भी नहीं मानूंगी, मैं अपनी सर्विस जरूर करूंगी। बाबा कहेगा तो भी नहीं मानेगी। वो ऐसा उनको निश्चय होता है ना। क्यों हम अपना बेस्ट टाइम करें, तो अपना भी कल्याण करें औरों का भी कल्याण करें। वो सारे सभी ह्यूमन मिशन है, वो सब है जिस्मानी और ये है इनकॉर्पोरियल रूहानी मिशन। क्योंकि तुम अपन को रूह समझती हो ना, तो ये रूहानी मिशन है और ये बड़ी वंडरफुल मिशन है। आगे चल करके समझ जावेंगे। जिस वंडरफुल मिशन का कोई भी वर्णन सिवाय अनुभव के कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि रूहानी मिशन भी होती है ना। वो दुनिया में तो सभी जिस्मानी मिशन है, जो भी है सब जिस्मानी। जिन जिन धर्म पिताओं ने भी जो भी धर्म स्थापन किए हैं, वो मनुष्य हैं, ईश्वरी भी कहें तो भी आत्मा तो है ना। आत्मा इनकॉर्पोरियल, ईश्वर भी इनकॉर्पोरियल। तुम्ही के रूहानी बच्चों, बच्चे तो बहुत हुए परंतु रूहानी बच्चों की बात है। अभी जब तुम्हारे से बात करते हैं तो देखो उनको भी तो बाबा याद आता है ना। मैं सबको याद देता हूँ, मुरली में भी जाता है, सभी रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार जाता है ना। ये तो जान गए हैं कि रूहानी बाप एक ही है। ये फिर जिस्मानी ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा कहा जाता है, एडम, ये सब देखो। पीछे भक्ति मार्ग में भी ये सभी देखो। अरे एडम फैडम ये नाम दे देते हैं। है वास्तव में रूहानी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा। फिर सभी तो नहीं कहेंगे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा फलाना फलाना तुमेव, नहीं। ये प्रिंसिपल बाप कहते हैं, बाप दादा माता पिता। बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। तो बच्चों ने भी कहा गुड नाइट। अच्छा, ओम शांति।